मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 10 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आय के वृत्तीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। सामान्यतः देखिए, इकोनॉमिक्स को लोग बहुत कठिन विषय मानते हैं और नो डाउट कि अपेक्षाकृत कठिन है भी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ही प्यारा विषय लगता है। और सच पूछिए तो पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, मेरा तो मानना ही यही है कि जिस विषय को हम समझने लगते हैं वह विषय हमें प्यारा लगने लगता है। और अर्थशास्त्र के विषय को समझना मुझे इसलिए अपेक्षाकृत थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि हम रहते ही अर्थशास्त्र के बीच में हैं। हम बाजार जा रहे हैं, अपने आसपास रोज खरीद फरोख्त कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, तो ये जो कुछ भी चल रहा है आर्थिक जगत में यही अर्थशास्त्र है। तो जब आप इसको अर्थशास्त्र समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर ऐसा लगने लगता है कि यार अच्छा इसमें भी अर्थशास्त्र है, इसमें भी अर्थशास्त्र, अच्छा यही तो अर्थशास्त्र है, ये कोई अलग से कोई बहुत ही क्वांटम साइंस नहीं है कि जिसके लिए हमें प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका विश्वास थोड़ा बढ़ने लगता है और जो भी आर्थिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें आप अर्थशास्त्र ढूंढने लगते हैं। और जब आप अर्थशास्त्र ढूंढने लगते हैं तो आपको अर्थशास्त्र उनमें मिलने लगता है, जब मिलने लगता है तो आपके समझ में आने लगता है, और जब समझ में आने लगता है तो आपको उसी विषय से मोहब्बत हो जाती है। अर्थशास्त्र दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का विषय है। अर्थशास्त्र क्या दूसरे भी विषय हैं लेकिन खासकर अर्थशास्त्र तो है, या जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को आप कैसे प्रकृति को देख करके इतना समझ पाएंगे, आप रेगिस्तान के बारे में समझने के लिए अब रेगिस्तान तो नहीं जाएंगे, लेकिन अर्थशास्त्र तो बिल्कुल आपके सामने रोजाना घटित हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, जब आप इसका नाम सुनते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो आपको थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है कि यार ये क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा अपने क्लास के स्टूडेंट को कि उनको ध्यान होगा कि जो मेरा इकोनॉमिक्स का जो अंतिम क्लास जो इकोनॉमिक्स की होती थी वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर ही होती थी। सब कुछ समझाने के बाद मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताता था। यहां आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप तो वहां आखिरी में बताते थे और यहां आप शुरुआत में बता रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो विषय का चयन होगा उसका आधार यह नहीं होगा कि मैं बिगिनिंग से किसी विषय की तैयारी करा रहा हूं, क्योंकि वो कैसे संभव है। जैसे पूरे के पूरे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के ऊपर ऑनलाइन के तहत मुझे लगता है कि शायद 75-80 घंटे के लेक्चर्स हैं और यहां मैं केवल आपके सामने 12-15 मिनट के लिए आता हूं, तो क्या शुरू से लेकर आखिरी तक इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जा सकती है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो मैं विषय का चयन करूंगा जिन विषयों का भी, उनका संबंध कहीं ना कहीं वर्तमान से होगा और इस बात से होगा कि वो अभी कम से कम परीक्षा में आपके लिए अपेक्षाकृत ज्यादा उपयोगी होंगे। आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, भरत झुनझुनवाला जी का आर्टिकल था, दैनिक जागरण में यह आर्टिकल छपा था, और उसका जो लास्ट पैरा है, लास्ट पैरा से ठीक ऊपर वाला पैरा, देखिए अब टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए, और जो लास्ट पैरा है उसके ठीक ऊपर वाले पैरा में उन्होंने बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, यह उन्होंने बताया है, छोटा सा पैरा है। अब सवाल यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए, यह तो उन्होंने बता दिया है और बिल्कुल सही भी बताया है, आप इसे याद भी कर लेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि बहुत सरल भाषा है और ये भाषा आप सुनते रहे हैं, लेकिन क्या आप इसे इन डेप्थ में जाकर समझ पाएंगे? क्या आप इसे इस रूप में समझ लेंगे कि इसी को बेस बनाकर जो भरत झुनझुनवाला जी ने लिखा है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या मेन्स में पूछ लिया जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकेंगे? सिविल सर्विस की तैयारी का फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। सिविल सर्विस की तैयारी एक कुएं की खुदाई की तरह होती है, ये तालाब की खुदाई नहीं है। तालाब क्या होता है? तालाब बहुत विशाल होता है, उसमें पानी भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां उसमें पानी आता कौन सा है? जो बरस करके इकट्ठा हो गया, जो पानी अदरवाइज बह जाता वो वहां रुक गया है। लेकिन कुएं में पानी भले ही कम हो लेकिन कुआं गहरा होता है और उसमें जो पानी आता है वो केवल वर्षा का जल नहीं आता है, केवल वही जल नहीं आता जो बहकर नष्ट हो जाता अन्यथा, उसमें वह जल आता है जो लगातार आसपास से रिस करके पहुंचता है। तो जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो कुएं के पानी की तरह होती है। इसमें लगातार जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो रिस रिस कर स्टोर होता रहता है और तब कहीं जाकर के आप आंसर देने के लायक बनते हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके यहां मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए, मैं केवल आपको बेसिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि शायद आपको ये बेहतर लगे समझाना और आपके लिए इस रूप में भी उपयोगी लगे कि सही विषय का चयन किया गया था। पहले टाइटल पर जाइए, शीर्षक क्या है। शीर्षक अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। हिंदी में है आय का वृत्तीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो, वृत्तीय प्रवाह का क्या मतलब होता है कि प्रवाह का मतलब तो घूमना है, बहना है, लेकिन वो बहना वृत्त की तरह है। वृत्त में यानी कि गोल घेरे में ही वह बह रहा है, रैखिक प्रवाह नहीं है। रैखिक प्रवाह क्या, रेल की पटरी एक रैखिक प्रवाह में है, लेकिन मेले में जो आप झूला झूलते हैं एकदम ऊपर से नीचे तक, वो वृत्तीय प्रवाह है। यानी कि उसमें होता यह है कि जहां से वह झूला शुरू होता है, पता लगा कि गोल घूम कर फिर वहीं आ जाता है, और फिर वहां से शुरू होकर के फिर वो गोल घूम करके वहीं आ जाता है। इस तरह से वह जो झूला है वृत्त में, एक गोल घेरे में घूमता रहता है, यह हुआ वृत्तीय प्रवाह। ठीक है, सर्कुलर फ्लो, एक ऐसा फ्लो जो सर्कुलर कर रहा है, बिल्कुल वृत्त में गोल घेरे में घूम रहा है। लेकिन ये घूमने वाला कौन है, क्या चीज गोल घेरे में घूम रहा है? इनकम, आय। जो आय है वो गोल घेरे में घूम रही है। किसकी आय गोल घेरे में घूम रही है? मेरी आय, आपकी आय, किसकी आय गोल घेरे में घूम रही है? सीधी सी बात है, देश की आय गोल घेरे में घूम रही है। यहां तक कि मेरी भी आय गोल घेरे में घूम रही, देश कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, हम सब की आय एक गोल घेरे में घूमती रहती है। इसका मतलब होता है कि आय जो हमें मिलती है वो फिर से घूमते घूमते और कहीं से होते होते फिर हमारे पास पहुंच जाती है, और फिर हमारे जरिए दूसरे तक जाते 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 पता नहीं बढ़ते बढ़ते उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और फिर हमारे पास पहुंच जाती है। तो इसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, उसकी जो आय होती है वो लगातार एक गोल घेरे में घूमती रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां से आय मिली थी वहीं वह आय फिर से पहुंच जाती है और लगातार घूमती रहती है। आइए अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप हम सभी जितने भी नागरिक हैं उनको आय कैसे मिलती है? आप चाहे रोजगार करते हैं तो आय मिलती है, चाहे आप नौकरी करते हैं तो आय मिलती है, किसानी करते हैं तो आय मिलती है, तभी हम इनकम करते हैं ना। और आपको मालूम है कि जो उत्पादन के कारक हैं उसमें से हम एक कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको मालूम है कि भूमि उत्पादन का कारक होता है, भूमि अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। हमारा श्रम उत्पादन का कारक है। देखिए, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वो एक ठीक है, वहां हम एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम श्रम कर रहे हैं, है ना। किसान भी श्रम कर रहा है, चाहे मैं आईएएस अफसर हूं, आप जो है ना चीफ मिनिस्टर हूं, आप भी श्रम कर रहे हैं। तो हम सब अपना अपना श्रम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब अपना श्रम बेच रहे हैं, उसके बदले में हमें आय हो रही है। जिसके पास बहुत अधिक कैपिटल है, धन है, तो धन के बदले में वो ब्याज कमा रहा है। तो ये सब के सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन। अब एक चीज आप लीजिए, आय के प्रवाह के जो है ना तीन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है उत्पादन, प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन किससे होता है? प्रोडक्शन के कारक होते हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर भी हैं तो यहां श्रम एक कारक है, उसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर, आप इलाज कर रहे हैं ना, तो अपना श्रम बेच रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन के बदले में हमें कुछ मिलता है, पैसा मिला हमें। एक फैक्ट्री को ले लीजिए, तो फैक्ट्री दुनिया भर की चीजें इकट्ठे करता है, जिसके बाद एक वस्तु पैदा करता है। जब वो वस्तु पैदा कर रहा है तो देखिए, उसके यहां उसने जमीन पर अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, तो उस जमीन का किराया दे रहा है। उसने कैपिटल ले रखा है बैंक से, तो बैंक को ब्याज दे रहा है। उसके यहां लोग काम कर रहे हैं, तो काम करने के बदले में वो लोगों को मजदूरी दे रहा है, ये सब कर रहा है ना वो, तो ये कितने लोगों को पैसा बांट रहा है। दूसरा जो लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब यहां आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे गया कि फैक्ट्री में आकर के जो चीजें जरूरत की लग रही हैं उन सब के बदले में फैक्ट्री वाला पैसा दे रहा है। तो उसके उसकी जो आय हो गई वो उसने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लोगों में बांट दिया। अब चलिए मान लीजिए कि मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर हूं और मुझे 50,000 रुपये हर महीने सैलरी मिल रही है, तो मैं सैलरी का क्या कर रहा हूं? चीजें खरीद रहा हूं ना, अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहा हूं। बाजार की दृष्टि से देखिए, एक फैक्ट्री की दृष्टि से नहीं, हजारों लाखों तरह की फैक्ट्रियां हैं, लाखों तरह की चीजों का उत्पादन हो रहा है। मैं अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहा हूं और उस जरूरत की चीजों में वो भी चीजें जो मैं अपनी फैक्ट्री में पैदा कर रहा हूं मैनेजर बन करके। तो मेरे पास जो पैसा आया है उन पैसों से मैं सामान खरीद रहा हूं, यानी कि यह तीसरा स्टेज होगा व्यय, व्यय डिस्पोजिशन। मेरे पास जो भी पैसा आया है उसका मैं व्यय कर रहा हूं। अब ये जो व्यय हो करके आपको नहीं लगता कि ये पैसा फिर से उत्पादन में चला गया? मैं चीज खरीद रहा हूं ना, मैं उस फैक्ट्री से बनी हुई चीज मैंने खरीदी, तो ये खरीदी आपको लग तो रहा है कि ये जो पैसा है ये दुकानदार के पास गया है, जिस दुकानदार से मैंने सामान खरीदा है, लेकिन अब ये पैसा जाएगा कहां? दुकानदार ये पैसा किसको देगा? फैक्ट्री वाले को देगा ना। तो ये पैसा फिर से फैक्ट्री में पहुंच गया और फैक्ट्री वाला फिर से उत्पादन करेगा क्योंकि आपने वहां पैसा पहुंचा दिया है, और फिर से वह मैनेजर के रूप में आपको पैसा देगा और फिर से आप इस पैसे से चीजें खरीदेंगे और फिर वो चीजें, फिर फैक्ट्री, वो चीजें खरीदने के बाद जो पैसा होगा वो फिर फैक्ट्री के पास चला जाएगा और फैक्ट्री फिर से आपको देगी। तो इस तरीके से समाज में, सोसाइटी में, अर्थव्यवस्था में लगातार जो हमारी आय होती है उसका फ्लो बना रहता है, और ये जो फ्लो होता है ये वृत्त में बना रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जब भी बात की जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो इतनी ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है अब इसे कैसे संभाला जाए, तो जितने भी अर्थशास्त्री हैं, लेख लिखे जा रहे हैं, वो यही कहते हैं कि आपको सोसाइटी में डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। डिमांड, आपको लग रहा होगा डिमांड जनरेट करने से क्या होगा? देखिए, मैं जिस आय की बात कर रहा हूं वही अर्थशास्त्र की भाषा में डिमांड भी कहलाती है। आप किसी वस्तु का डिमांड कब करेंगे, कब मांग करेंगे? जब आपकी आय होगी तभी ना, अदरवाइज तो आप डिमांड नहीं करेंगे। आपके पास जब पैसा बचेगा तभी आप सोचेंगे कि यार चलो अब इससे ये खरीद लिया जाए। तो यह कहा जा रहा है कि आप डिमांड जनरेट कीजिए। डिमांड जनरेट करने का मतलब है कि अपने लोगों की आय को बढ़ाइए। अब आप कैसे बढ़ा सकते हैं आप देखिए, क्योंकि अभी फैक्ट्रियां बंद हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए, और सरकार इसके लिए अपने स्तर पर जो भी कर सकती है अपनी पॉलिसी के तहत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैंने अभी आपको ये छोटा सा बेसिक तथ्य दिया है, बहुत ही छोटा सा बेसिक तथ्य है ये। अगर आपके पास वह आर्टिकल हो भरत झुनझुनवाला जी का, 2 दिन पहले का ही है, नहीं हो तो आप चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। लास्ट पैरा से ठीक पहले वाला पैरा है, आप उसे पढ़िए, और इस अब ये जो मैंने बेसिक बताया है इस बेसिक को पढ़ने के बाद आप देखिए कि अब उसी पैरे को समझने का आपका जो अर्थ है, समझने की जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और अब आप उस पैरे की एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। और यही रियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट भी है, और इसे ही मैं कहता हूं कैपेसिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपकी क्षमता का निर्माण हो जाना। तो फ्रेंड्स, इस मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं आशुतोष आचार्य और सत्येंद्र निषाद। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।